Recording in progress.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون إلى الآخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو سورہ مؤمنون کی ان آیات کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں. خلاصہ تفسیر آج شروع کرنی ہے کیونکہ کل ترجمہ پڑھ کے مکمل کر لیا تھا 63 سے 77 تک 63 سے 77. ان کی خلاصہ تفسیر شروع کر رہے ہیں. سب سے پہلے بریکٹس میں حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر لکھتے ہیں کہ یہ تو اوپر مؤمنین کی حالت سنی, ٹھیک ہے, یعنی اس سے پیچھے جو آیات تھیں ان میں ایمان والوں کی حالت کیفیات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کی عظمت سے ڈرتے رہتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لے کر آتے ہیں اور وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے ہیں اور جو ان کے وہ دیتے ہیں جو وہ دیتے ہیں اور ان کے دل جو ہیں وہ کانپتے رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کی طرف واپس جانا ہوتا ہے, وہ نیکی میں وہ آگے بڑھتے ہیں ایک دوسرے سے, یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون, اور اللہ تعالیٰ اب کسی کے اوپر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں اور یہ پکی ٹھکی بات ہے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہ سب کیا تھا, یہ ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا. اب اس کے بعد جو ہے کفار کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ مگر کفار ایسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا بھائی, ڈفرنس ہے نا دونوں میں, فرق ہے نا دونوں میں, جیسا عمل ہوتا ہے ویسا ہی انجام ہوتا ہے. تو اب کافر کا انجام اگر جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ کی یا جہنم کا عذاب ہے تو اس کے اس وقت کے حالات کی وجہ سے ہے کہ اس کے حالات ایمان والوں کے حالات سے مختلف ہیں, رائٹ. ایمان والے جنت میں جائیں گے, کافر جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے, بالکل اپوزٹ انجام ہے دونوں کا, بالکل اپوزٹ انجام ہے نا دونوں کا, ٹھیک ہے نا. تو جب انجام بالکل ایک دوسرے سے اپوزٹ ہے, متضاد ہے, رائٹ, تو پھر آج کا جو حال ہے جس کی بنیاد پر وہ انجام ہے وہ حال بھی اپوزٹ ہوگا, وہ حال بھی اپوزٹ ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں کے درمیان دنیا کی زندگی میں فرق تھوڑا سا ہو اور انجام جو ہے وہ بالکل اپوزٹ ہو جائے. یہ بڑی سوچنے کی بات ہے, یہ بہت زیادہ اس کے اوپر نا فکر کرنے کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں حال جو ہے وہ دونوں کا ملتا جلتا ہو اور آخرت میں حال جو ہے وہ بالکل اپوزٹ ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ جو عاجز یہ فقیر یہ بات کہہ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ دو باتیں ہیں اس کے اندر, بہت امپورٹنٹ دو باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ آج کا جو مسلمان ہے عمومی طور پر, ٹھیک ہے نا, کافروں کے ساتھ نان مسلمز کے ساتھ اختلاط بہت زیادہ ہے ہمارا, ٹھیک ہے نا. یا تو ہم فزیکلی کافروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ملتے جلتے ہیں, ان کے ملکوں کے اندر رہتے ہیں, ان کی میجورٹی ایریاز کے اندر رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یا ہم آن لائن بہت زیادہ کافروں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں, ورک کے اوپر بہت زیادہ انٹریکشن کرتے ہیں آن لائن بھی اور آن سائٹ بھی, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں جو ہے نا وہ کافر جو ہے وہ بڑے ملتے جلتے لگتے ہیں, بڑے اپنے جیسے لگتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی کافروں میں مسلمانوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. ہاں بھائی وہ سور کھاتے ہیں, ہم سور نہیں کھاتے, ٹھیک ہے نا, وہ شراب پیتے ہیں, ہم شراب نہیں پیتے, بلکہ کچھ تو اللہ معاف کرے وہ انہوں نے مذاق میں یہ بات کہی تھی یا حقیقت میں بات کہی تھی, مرزا اسد اللہ خان غالب ہے نا, کہ میں آدھا مسلمان ہوں, میں شراب پیتا ہوں سور نہیں کھاتا, ٹھیک ہے نا, یعنی آدھا جو ہے میں عیسائیوں کی طرح ہوں, جس طرح انگریز ہوتے ہیں اس طرح کا ہوں, ٹھیک ہے. بہرحال وہ حقیقت اس ان کے قول کی جو بھی ہے, لیکن اسی طرح کا ہمارا بھی حال ہے کہ ہم جو ہے وہ کچھ بڑی بڑی جو ہے نا وہ اس قسم کی چیزیں نہیں کرتے ہیں, باقی ہم سارا کا سارا وہی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم جب کافروں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں نا تو ہمیں ان میں آپس میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا, ٹھیک ہے نا, بس تھوڑا سا فرق ہے, بس وہ جو ہے وہ گرجے چلے جاتے ہیں اور وہ جو ہے مندر چلے جاتے ہیں اور ہم جو ہے وہ مسجد چلے جاتے ہیں. ہماری اپنی عبادت گاہ ہے, ان کی اپنی عبادت گاہ ہے, ہر ایک اپنا اپنا طریقہ ہے بھائی عبادت کرنے کا, اللہ کو راضی کرنے کا, تو کوئی خاص فرق نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ایک بات تو یہ کہ ہمیں فرق نظر نہیں آتا, ٹھیک ہے نا, اور دوسری بات یہ ہے کہ واقعی اگر ہمارے حالات کو دیکھا جائے تو واقعی کوئی فرق نظر نہیں آتا, یا بہت تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے. ایک مسلمان سو کالڈ, اس کی بھی زندگی کے شب و روز ویسے ہی گزر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ کافر کی زندگی کے, رائٹ, جو خصوصاً جو نماز نہیں پڑھتا مسلمان, ٹھیک ہے نا. اب نماز نہیں پڑھتا تو اب اس کی زندگی میں اور کافر کی زندگی میں کیا فرق رہ گیا, سوائے شاید نام مختلف ہوگا, اس کے اماں ابا نے اس کا جو ہے وہ کوئی مسلمان نام رکھا ہوگا, اس کے اماں ابا نے جو ہے اس کا کوئی کافر نام رکھا ہوگا, اس کے علاوہ تو کوئی فرق نظر ہی نہیں آتا بے نمازی مسلمان کی زندگی میں اور کافر کی زندگی میں, ٹھیک ہے. بہت ہی یعنی ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے, کھود کریت کر کے کوئی فرق نظر آئے گا, ورنہ نظر نہیں آتا. تو بھائی جب دنیا کی زندگی میں فرق نظر نہیں آتا, فرق نہیں سمجھ میں آتا, تو آخرت میں ایک دم اپوزٹ فرق کیسے ہو جائے گا, رائٹ. آخرت میں وہ جہنم ہمیشہ ہمیشہ اور ہم جنت ہمیشہ ہمیشہ, ٹھیک ہے نا بھائی, اتنا بڑا فرق, انجام اتنا زیادہ مختلف, جبکہ حال جو ہے وہ اتنا زیادہ سملر, یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ تو کچھ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, یہ تو کچھ ظلم والی کیفیت لگ رہی ہے, رائٹ. اس میں کچھ ظلم والی شائبہ نہیں نظر آ رہا ہے نا بھائی, کہ انہوں نے بھی وہی کیا جو ہم کر رہے ہیں اور انجام میں جو ہے وہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم اور ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت, یہ تو کچھ ظلم والی کیفیت لگ رہی ہے. تو کیا ایسا ہی ہے یا ایسا ہی ہونا چاہیے؟ آف کورس ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ایسا ہے بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو, اچھا اس کا جواب چلیں آپ دیں, آپ سے پوچھتے ہیں کیا جواب ہے اس کا, کیا بالکل جو فرق ہے انجام میں بالکل 180 degrees, وہ بالکل اس ڈائریکشن میں, یہ بالکل اس ڈائریکشن میں, تو کیا اس دنیا کے اندر بھی جو فرق ہے وہ یہ 180 degree والا فرق نہیں ہے مسلمان میں اور کافر میں؟ اگر ہے تو کیسے ہے, کہیں ہمیں نظر تو نہیں آتا, اگر ہے تو کیسے ہے فرق, اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اس نے پہلا سوال یہ ہے کہ فرق ہے تو کیسے ہے, کس بنیاد پر ہے, جی کس بنیاد پر ہم میں اور ان میں 180 degree فرق ہے, اس کی اصل بنیاد کیا ہے؟ ایمان, صحیح ہے, صحیح فرمایا, ایمان کی بنیاد پر, ٹھیک ہے نا. لیکن ایمان کو بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا ذرا اس کو ایکسپینڈ کر لیں, اس کو یہ کمپیوٹر کا اتنا تو سب کو اندازہ ہے نا, زپ کرنا ہے نا, فائلز کو زپ کر لیتے ہیں, اب وہ زپ فولڈر بن جاتا ہے, اب ساری فائل اس کے اندر زپ ہوئی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, اب کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کہ اندر ہے کیا, کیا اس کی تفصیلات ہیں, کیا ہے نا, بس وہ زپ فولڈر بنا ہوا ہے, وہ اندر کچھ جو ہے وہ .rar فائل فارمیٹ بھی ہوتا ہے اسی طرح زپ کا, ٹھیک ہے نا, اور بھی بہت سارے فائل فارمیٹس ہوتے ہیں, زپڈ فائل فارمیٹ. اسی طریقے سے لفظ ایمان جو ہے نا یہ ایک زپڈ فائل فارمیٹ ہے, زپڈ فائل ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر کیا ہے بھائی, رائٹ, جس کی بنیاد پر یہ ایمان بنتا ہے وہ کیا ہے, تو تھوڑا سا نا اس کو انزپ کر کے بھی بات کر لینی چاہیے کبھی کبھی, انزپ کر کے بھی, ٹھیک ہے نا, ایکسٹریکٹ کر کے بھی, ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ عقائد, ٹھیک ہے نا. یہ جو زپ فولڈر کے اندر جو فائلز ہیں نا جو زپ کری ہوئی ہیں ایمان کے اندر, وہ کہلاتی ہیں عقائد, ٹھیک ہے نا. تو جو فرق کافر میں اور مسلمان میں ہے نا وہ ہے عقائد کی بنیاد کے اوپر, عقائد کی بنیاد کے اوپر, ٹھیک ہے نا. اب اگر عقائد جو ہیں وہ ان کے عقائد سے کوئی خاص فرق نہیں ہے, तो अब जो है वो अचार डालें आप अपने ईमान का, ये जो हम ईमान ईमान बोलते रहते हैं ना बहुत ज्यादा, ठीक है ना, तो अब इस ईमान का वो पान बनाएं, कत्था चूना लगाएं इसके ऊपर, इस ईमान के ऊपर, ठीक है ना। ईमान का जो एक नारा है, जैसे वो क्या कहते हैं, रोटी कपड़ा और मकान का एक नारा है, अब इसकी तफसीलात क्या है भाई, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कैसे देंगे, रोटी कितनी मिली, रोटी कहाँ से आएगी, रोटी कहाँ तक जाएगी, कपड़ा कहाँ से आएगा, कपड़ा कैसे बनेगा, कपड़ा कैसे मिलेगा, ठीक है ना। उसी तरीके से मकान जो है वो इतने लाखों मकान बनाएंगे और सबको मकान दे देंगे, ये मकान बनेंगे कैसे, ये मकान बनेंगे कहाँ, ठीक है ना भाई। तो नारा मारना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन जब उसकी तफसीलात खुल के आती है ना, तो फिर हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं उसके बाद, है कि नहीं ऐसा। उसी तरीके से ये ईमान जो है ना, ये नारा बड़ा दिल फरेब है, ईमान का नारा बड़ा दिल फरेब है, लेकिन जब इसकी खुलती है ना तफसीलात, तो फिर जो है वो पसीने छूट जाते हैं कि अकायद का क्या मामला है, अकायद का मामला क्या है, क्या अकायद जो है वो सही है या बस ऐसे ही बस नारे मारे चले जा रहे हैं ईमान वाले ईमान वाले। ठीक है, तो अकायद ठीक होंगे तब वो ईमान ठीक होगा, वरना जो जिस बुनियाद पर फर्क होना चाहिए था वो अकायद की बुनियाद पर फर्क होना चाहिए था, और अकायद जो है वो तो मिलते जुलते से अकायद है। हाँ भाई वो कर रहे हैं, वो भी बड़ा ठीक ही कर रहे हैं, अच्छा ही हो रहा है, सब ठीक ठाक है ना भाई, वो भी बड़े, उनका भी अपना एक स्टाइल है अल्लाह को राजी करने का, हमारा भी एक स्टाइल है अल्लाह को राजी करने का, बस गए, अकायद खत्म। क्या मतलब, वो अल्लाह को राजी कर रहे हैं और हम भी अल्लाह को राजी कर रहे हैं, उनका एक तरीका है हमारा एक तरीका है ना, हम ईमान वाले हैं और वो काफिर हैं, बस ये फर्क है भाई। तफसील क्या है इसकी, तफसील क्या है इसकी, तफसील अगर ठीक नहीं हुई तो ईमान भी ठीक नहीं हुआ, ठीक है ना। खत्म नबूवत, अच्छा वो कादियानी हैं तो बड़े नाइस लोग है ना, बड़े अच्छे से काम करते हैं और बड़े उन्होंने अच्छे इदारे बनाए हुए हैं, और अब तो बड़ी जबरदस्त किस्म की चैरिटी भी करते हैं, अब तो बड़े किस्म की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी उनकी हैं कादियानियों की, है ना। सो वाई यू नो ये मुल्ला लोग जो है वो क्यों कादियानों के इतने खिलाफ हुए हैं। अकीदा खत्म, खत्म नबूवत की अहमियत खत्म हो गई आपके दिल से, आपने एक खत्म नबूवत का इनकार करने वाला जो है वो उसके बारे में ये कहना शुरू कर दिया कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट्स द बिग डील, क्या मसला है इन मौलवियों के, इन लोगों के साथ, ठीक है ना। तो अब आप अपने ईमान का अचार डालते रहे उसके बाद, बात समझ में आ रही है, अचार डालने का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अब इस ईमान से आपको कोई फायदा नहीं होगा सिवाय इसके कि अचार डालने के अंदर ये अचार की तरह से पकता रहेगा, ठीक है ना। तो ईमान की कुछ हकीकत होती है, ईमान की कोई असलियत होती है, वो असलियत और हकीकत वो अकायद हैं, ठीक है ना। तो कुफार और मुसलमानों के दरमियान अकायद की बुनियाद पे फर्क होता है, ठीक है। अब उसके ऊपर जो अमाल है वो अमाल जो है वो अकायद से निकलते हैं, अकायद से फिर जो है ना वो प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है ना, उनकी बुनियाद अकायद होते हैं। तो जब अकायद सही होंगे ना तो फिर जो आमाल भी जो हैं वो फिर बेहतर होते हैं, बेहतर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वक्त जो है ना ये आमाल का मसला इतना बड़ा नहीं पड़ा हुआ जितना बड़ा जो है ना वो अकायद का मसला पड़ा हुआ है, ठीक है। शैतान को के पैरोकार हैं भी और मुस्लिम के अकीद अकायद और हैं, शैतान के पैरोकार, क्या लिखा है आपने, बहरहाल ठीक है। तो बरअक्स, बरअक्स यानी बिल्कुल ऑपोजिट, इन कुफार के कुलूब उस दीन की तरफ से जिसका जिक्र बे आयात रब्बिहिम में है, पीछे जो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ये अल्लाह ताला की बे आयात रब्बिहिम युमिनून, ठीक है ना। तो यही तो ईमान है, यही तो दीन है, अल्लाह ताला की आयात को मान लेना, ठीक है ना। तो ये जो काफिर है ना, ये उन आयात के बारे में यानी दीन की बातों के बारे में जहालत और शक में डूबे हुए हैं। आज के मुसलमानों की कितनी बड़ी तादाद है जो कि दीन के बारे में जहालत और शक में डूबे हुए हैं, ठीक है, जिनका हाल ऊपर भी मालूम हो चुका, जैसे कि ऊपर उन लोगों का तस्करा है कि फजरहुम फी गम गम रहती हैं, ठीक है, कि आप उन लोगों को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए उन लोगों को जो कि अपने यानी बेहोशी के अंदर, बेहोशी की हालत के अंदर है, ठीक है। तो नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने उस वक्त ऊपर जो है आयत पढ़ चुके हैं कि हलकान न कीजिए बल्कि इनको जाने दीजिए, इनको छोड़ें। और इस जहालत और इनकार के अलावा इन लोगों के और भी बुरे बुरे खबीस अमल हैं जिनको ये मुसलसल करते रहते हैं, ठीक है। तो ये लोग शिर्क और आमाल सैया यानी वलहुम आमाल मिन दून ज़ालिका हुम लहा आमिलून, जिनको ये लोग करते रहते हैं, ये लोग शिर्क और आमाल सैया के बराबर खूगर रहेंगे, यानी उन्हीं उन्हीं को अच्छा समझते रहेंगे, उन्हीं के अंदर लगे रहेंगे शिर्की अमाल के अंदर और गुनाहों के अमाल के अंदर। यहाँ तक कि जब हम उनके खुशहाल लोगों को, ये जो है ना शिर्क और आमाल सैया के बराबर खूगर रहेंगे, तो सिफत जो है ना ये काफिर की कि वो एक तो शिर्क का खूगर रहता है, यानी शिर्क ही को जो है वो सही समझता रहता है, शिर्क ही के ऊपर चलता रहता है, और दूसरी सिफत क्या है कि वो आदतन गुनाह करता है आमाल सैया, ठीक है ना, ये काफिर की सिफत है कि वो आदतन गुनाह कबीरा करता है। मोमिन की तो ये सिफत है ही नहीं कि वो गुनाह कबीरा जो है वो कसरत के साथ करता रहे और आदतन करता रहे, ठीक है ना, ये मोमिन की सिफात में से सिफत है ही नहीं, ठीक है ना। इसी वजह से बहुत सारी हदीसें जो आप पढ़ती हैं सुनते हैं आप लोग, ठीक है ना, कि अल्लाह ताला जो है वो इस वाले नेक अमल की बुनियाद पर वो गुनाह माफ कर देते हैं, वो गुनाह माफ कर देते हैं, वुजू करने पे ये गुनाह माफ हो जाते हैं, जुम्मे जुम्मे से जुम्मे के दरमियान के ये सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, और उम्रे से उम्रे के दरमियान के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके ऊपर जो उलमा बताते हैं ना कि जी ये जिन गुनाहों की बात हो रही है ये सगीरा छोटे छोटे गुनाहों की बात हो रही है, ये कबीरा गुनाहों की बात ही नहीं हो रही, भाई क्यों नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने फिर छोटे गुनाहों के लिए सगीरा का लफ्ज ऐड क्यों नहीं किया, भाई सगीरा का लफ्ज भी तो अरबी जुबान का लफ्ज है ना। तो अगर नबी अलैहिस्सलाम सलाम फरमा रहे थे कि जी गुनाह माफ हो जाते हैं गुनाह माफ हो जाते हैं, तो सगीरा का लफ्ज को साथ शामिल क्यों नहीं किया अपनी बात के अंदर। उसका जवाब देते हैं उलमा के कबीरा गुनाहों का इतना ज्यादा होते रहना कि जैसे झाग की मानिंद भी हो तो वो माफ हो जाते हैं, तो भाई कबीरा गुनाह झाग की मानिंद कैसे हो सकते हैं, एक मुसलमान तो कबीरा गुनाह कर ही नहीं सकता कि वो झाग की मानिंद बन जाए, कि वो इतनी बड़ी तादाद में बन जाए कि पता चला जी वो जुम्मे जुम्मे के दरमियान सारे माफ किए जा रहे हैं और उम्र उम्र के दरमियान सारे माफ किए जा रहे हैं, भाई वो तो एक आद कभी उससे हो जाता है ना। कबीरा गुनाह का तो ये मामला है कि वो खिलाफ आदत मुसलमान से हो जाता है, ठीक है ना, बशरी तकाजे की वजह से उससे कभी हो जाता है, ठीक है ना, और फिर उसके ऊपर वो नादिम भी होता रहता है, शर्मिंदा भी होता रहता है, अल्लाह ताला उसके ऊपर तौबा की तौफीक भी देते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आमाल सैया के बराबर खूगर रहे, जो हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह ने यहाँ पे लिखा है ना, इसका मतलब यही है कि ये जो सिफत है ये काफिर की सिफत है, ये काफिर की सिफत है, ये ईमान वाले की सिफत है ही नहीं, ठीक है। बहरहाल आगे फरमाते हैं कि यहाँ तक कि जब हम उनके खुशहाल लोगों को जिनके पास माल दौलत और नौकर चाकर सब कुछ है, ठीक है, यानी अमीर कबीर लोग जो जो, जो काफिरों के दरमियान है, हत्ता इज़ा अखज़ना मुतरफीहिम, उनके दरमियान जो अच्छे आसूदा हाल लोग हैं, बिल अजाबी इज़ा हुम यजअरून, ठीक है, अजाब बादल मौत में धर पकड़ेंगे, यानी यहाँ पर मौत के बाद वाले अजाब की बात हो रही है कि जब उनको पकड़ लेंगे ना। अच्छा, अब इसकी तफसीर में लिख रहे हैं कि गरीब गुरबा तो किस गिनती में है, क्या मतलब कि इस आयत के तर्जुमे को पढ़ के किसी के जहन में ये ख्याल आ सकता है कि अच्छा उनके जो अमीर कबीर है ना वो हैं असल में बुरे लोग बदबख्त लोग, उनको अल्लाह ताला पकड़ेंगे, और गरीब अवाम बेचारी, जैसे हमारे यहाँ मुल्क में हर वक्त यही ढंडोरा पीटा जा रहा होता है, गरीब अवाम बेचारी है ना, और ये सियासतदान खबीस है ना, गरीब अवाम हमेशा बेचारी ही रहती है, तो बेचारों को किस बात की सजा दे रहे हैं आप भाई, है ना, बेचारों को तो जो है वो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देनी चाहिए थी, VIP ट्रीटमेंट देनी चाहिए थी, है ना, जैसे कि वो कम्युनिज्म का नारा था कि भाई अवाम की हुकूमत होगी तो अवाम को जो है ना फिर VIP ट्रीटमेंट मिलेगी, और ये जितने वडेरे हैं और बादशाह हैं इन सबको जो है वो मार दिया जाएगा इनको, है ना। तो जो बनाने वाला है ना वो ऐसे नहीं बताता कि ये अवाम जो है ये बेचारी नहीं है, अवाम बेचारी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो कहा जा रहा है कि उनके बड़ों, उनके अमीरों को हम सजा देंगे, इसका मतलब खाली ये है कि देखो तुम दुनिया में समझते हो ना कि अमीर जो है ना वो सजा से बच जाता है, अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके, अपना माल पैसा इस्तेमाल करके, अपने खादिम इस्तेमाल करके वो अजाब से बच जाता है। तो हमारा अजाब जो है ना उससे वो भी नहीं बच सकेगा। हमारे अजाब से ये माल दौलत ताकत वाले भी नहीं बच सकेंगे, तो तुम कैसे बचोगे? जिनके पास ना माल है, ना दौलत है, ना खादिम है, ना ताकत है, तुम कैसे बचोगे? ठीक है, अब इसका तर्जुमा पढ़ के इस तफसीर तक खुद से पहुंच के दिखाएं। ठीक है, इस तफसीर तक तर्जुमा पढ़ के इस आयत का, या अरबी पढ़ के इस आयत की खुद से पहुंच के दिखाएं, नहीं पहुंच सकेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, तो इस वजह से ना हम हैं मोहताज अपने उलमाए कराम के, मुफस्सरीन उजाम के, हम हैं मोहताज। अल्लाह ताला ने इनको तौफीक अता फरमाई कि वो उलूमुल कुरान की गहराई में जाएं, और इनको अल्लाह ताला ने इनके तकवा की सबब ऐसी बसीरत भी अता फरमाई कि वो असल मआने तक पहुंचते हैं जिन तक हमारा वहम गुमान भी नहीं पहुंच सकता। राइट, हम तर्जुमा पढ़ते रहे, हम अरबी जुबान भी सीख लें ना, हम इस मफहूम तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, इल्ला माशा अल्लाह, किसी के दिल में अल्लाह ताला कोई बात डाल दे एज एन एक्सेप्शन, बट नॉट एज अ रूल। ठीक है, तो थानवी रहमतुल्लाह ने इसकी तफसीर लिखी कि गरीब गुरबा तो किस गिनती में है, और वो तो अजाब से क्या बचाव कर सकते हैं, यानी जब अमीर नहीं बच सके तो गरीब कैसे बचेंगे। गर्ज ये कि जब उन सब पर अजाब नाजिल होगा, अमीरों पर भी अजाब नाजिल होगा, गरीबों पर भी अजाब नाजिल होगा। ठीक है ना, क्यों? इसलिए कि गरीबों ने उन अमीरों को अपना सरदार बनाया क्यों? राइट भाई, गरीबों के सामने अल्लाह के नेक बंदे भी तो थे, राइट, अंबिया भी तो थे, औलिया भी तो थे। गरीब उनको अपना सरदार बनाते, उनको अपना इमाम बनाते, उनको मुक्तदा बनाते। ठीक है ना, लेकिन ये जो अंबिया थे इनके पास दौलत की चकाचौंध नहीं थी, इनके पास दुनिया की जो है वो लज्जतें नहीं थी, और इन गरीबों को जो है वो दुनिया की लज्जतें चाहिए थी। या लैतना मिथला मा ऊतिया कारून, कली तरावी में आया फिर सुनी, राइट, कि ये जो गरीब लोग थे ना जिनके पास कारून जैसी दौलत नहीं थी, तो वो यही तमन्ना करते थे, ओ क्या काश के हमारे पास भी वही सब कुछ होता जो कारून को दिया गया है। तो मुल्क के जो गरीब होते हैं उनका ये हाल होता है, इस वजह से अजाब के मुस्तहिक गरीब भी बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी अमीरों जैसा बनने की तमन्ना रखते हैं दिल के अंदर, और असल चीज जो अल्लाह ताला के यहाँ मैटर करती है वो दिल की तमन्ना होती है। राइट, तो इस वजह से अजाब का शिकार सब होंगे। अब जाहिर है अमीर जैसे अमल करता है गुनाह वाले, शराब कबाब और उल्टी सीधी बड़ी बड़ी जो है वो, गरीब तो वो कर ही नहीं सकता। गरीब के पास तो पैसे ही नहीं, गरीब के पास तो ऐसे हालात ही नहीं, ऐसे वसाइल ही नहीं, वो तो वो गुने गुनाह के बड़े बड़े अमल कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर अमल की बुनियाद पर अजाब होता तो फिर तो गरीब बच जाता, क्योंकि वो तो ये गुनाह कर ही नहीं सकता था, अमीर पकड़ा जाता खाली। लेकिन पता लगा कि अजाब अमल की बुनियाद पर नहीं होता, अजाब दिल की कैफियत की बुनियाद पर होता है, दिल की चाहतों की बुनियाद पर होता है। इसी वजह से कल भी बात करी थी बार बार कि अपने दिलों पर मेहनत करने की जरूरत है। हमारी सारी अगर एफर्ट है भी ना दीन के अंदर, वो है अमलों के ऊपर। राइट, हत्ता के चूंकि हम जाहिर है अमल को सबसे अहम समझते हैं ना, इसी वजह से जब हम किसी को दीन की दावत देते हैं ना, दीन की तबलीग करते हैं ना, उसको भी अमलों से जोड़ते हैं, अमल से जोड़ जाओ, इतनी नमाजें पढ़ना शुरू कर दो, इतनी तस्बीहात पढ़ना शुरू कर दो, इतने उमरे करना शुरू कर दो, इतने वजीफे पढ़ना शुरू कर दो, ये करना शुरू कर दो, वो करना शुरू कर दो, अमल अमल से जोड़ते हैं। हम समझते हैं वो कामयाब हो जाएगा अमल करके। भाई फजाइले अमाल बेशक हमारे बहुत बड़े अकाबिर बुजुर्ग और वली अल्लाह ने लिखी है, लेकिन फजाइले अमाल लिखने का ये मतलब नहीं था कि बस अमल अमल अमल। नहीं, हजरत तो दिलों के भेदी थे, हजरत मौलाना जकरिया रहमतुल्लाह अलैह, वो तो दिल वाले थे, उन्होंने इस मकसद से फजाइले अमाल नहीं लिखी थी, लेकिन हमने नहीं समझा उनकी बात को, हमने उनके मकसद को नहीं समझा। ठीक है ना, तो फजाइले अमाल को लेकर के कोई कोई ये ना बोले कि जी आप कैसी बात कर रहे हैं, और मौलाना जकरिया ने फजाइल अमाल लिखी और आप कह रहे हैं जी हम लोग की कोई नहीं होती। भाई दिल की कैफियत असल होती है, अगर दिल की कैफियत ना बने तो अमाल से फायदा नहीं होने वाला है। इस वजह से दीन की तबलीग का तरीका अमाल से जोड़ना नहीं होता, दीन की तबलीग का तरीका दिल वालों से जोड़ना होता है। दिल वालों से जोड़ना यह है दीन की तबलीग का तरीका। जब दिल वालों से जुड़ जाते हैं तब आमाल बनते हैं दिल की कैफियत के साथ, तब नीयतें दुरुस्त होती हैं, और दुरुस्त नीयत के साथ थोड़ा अमल भी इंसान को वो फायदा दे जाता है जो नीयत की खराबी के साथ पहाड़ों जैसा अमल भी इंसान को फायदा नहीं दे सकता। आप तो ये सवाल नहीं करें तो बेहतर है, डांट ही पड़ेगी। दिलों पर मेहनत कैसे की जाती है? चलिए खैर, आपने दूसरों के लिए इंशाल्लाह किया होगा, अगर अपने लिए किया है तो फिर तो बस बहुत ज्यादा डांट पड़ने की जरूरत है। इतने साल गुजरने के बाद भी ये सवाल हो रहा है दिल पर मेहनत कैसे की जाती है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपने इसलिए किया होगा कि भाई दूसरे लोग भी सुन लें कि भाई दिल पर मेहनत कैसे की जाती है। दिल पर मेहनत जो है वो सबसे नंबर वन पॉइंट होता है तौबा। अपने दिल की गंदी कैफियत के ऊपर अल्लाह से तौबा, राइट ये पहला अमल है। दिल पर मेहनत करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले अपने दिल की गंद के ऊपर अल्लाह से तौबा, ठीक है, और उसके ऊपर अल्लाह, उसके बाद अल्लाह ताला से दिल को संवारने की दुआ करना। चंद दिन रह गए रमजान मुबारक के, इन लम्हों के अंदर, इन घड़ियों के अंदर जो हमारे पास अल्लाह ताला की तौफीक से अभी बाकी बचे हुए हैं, अपने दिलों की सफाई के लिए दुआ मांग लें, अल्लाह ताला से मनवा लें अपने दिल की सफाई, राइट। ए अल्लाह मेरे दिल को दुनिया की मोहब्बत की गलाजत से पाक कर दीजिए। दिल में कैफियत भी ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया की मोहब्बत जो है ना ये गलाजत है, ये गलाजत है, दिस इज प्योर इम्प्योरिटी, ठीक है ना। फिर इस इम्प्योरिटी से क्लीनलीनेस के लिए अल्लाह ताला से दुआ जो है ना, फिर वो दिल से दुआ भी निकलेगी, ठीक है। तो सबसे पहली तौबा, ए अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है ना, ये जो मैंने दिल के अंदर आपके गैर को बसाया हुआ है, और दुनिया की मोहब्बत और माल की मोहब्बत और जमाल की मोहब्बत, राइट, मैं इसके ऊपर नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ, और अल्लाह मैं आपसे इरादा करता हूँ, करती हूँ कि आइंदा मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती, नहीं गुजारना चाहता मैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ए अल्लाह मैं खुद तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे निकालूं इस मोहब्बत को अपने दिल से, ए अल्लाह मेरे लिए मुमकिन नहीं नजर आ रहा, आपके लिए तो ये बहुत आसान है, आप निकाल दीजिए, मैं अपने आप को आपके हवाले करती हूं, मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूं, अपने दिल को आपके हवाले करता हूं, ए अल्लाह आप इसको साफ कर दीजिए, आप अपनी रहमत की निगाह डाल करके इसको धो दीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से अल्लाह ताला से दुआ मांग लें, फिर उसके बाद जो है ना वो दिल वालों के साथ जुड़ने की मेहनत करें, सही सच्ची मेहनत, है ना, किसी और उल्टी सीधी गर्ज गायत की वजह से नहीं, बल्कि अपने दिल की सफाई के लिए दिल वालों के साथ अपना ताल्लुक बनाना और उनसे सीखना, ठीक है ना, जैसे वो जिंदगी गुजारते हैं वैसे जिंदगी गुजारने की कोशिश करना, जैसे वो सोचते हैं वैसे सोचने की मेहनत करना करना, ठीक है ना, ये करना शुरू कर दें, दिल की सफाई हो जाएगी, ठीक है ना। इसके लिए कोई उठक बैठक करना और दुनिया के चक्कर काटना और आसमान चांद चांद के तारे तोड़ के लाना, आसमान के तारे, कुछ नहीं करने की जरूरत है इसके लिए, ठीक है ना। अल्लाहुम्मा सब्बित कुलूबना अला दीनिक, जी ये तो माशाल्लाह रटी रटाई बहुत सही, अच्छी अच्छी दुआएं हैं, तो दुआएं मांगे, दुआओं की तो बात हो चुकी है ना, ठीक है। तो यहां तक, हाँ, तो ये जो गरीब गुरबा है ना सब पर अजाब नाजिल होगा, तो फौरन चिल्ला उठेंगे और सारा इनकार व इस्तिकबार, है ना, यानी इनकार करना दुनिया में जो करते थे, और इस्तिकबार यानी तकबर जो ये करते थे जिसके अब आदि हैं, काफूर हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब छूट जाएगा इनका उस वक्त। उस वक्त उनसे कहा जाएगा अब मत चिल्लाओ, ला तज अरुल यौम, अब मत फरियाद करो, मत चिल्लाओ कि कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारी तरफ से तुम्हारी मुतलक मदद ना हो, मुतलक का मतलब किसी सूरत में किसी शक्ल में हमारी मदद अब तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो दारुल जजा है, यानी अब मरने के बाद जो है ना, ये तो दारुल जजा है, ये दारुल अमल नहीं है कि जिसमें चिल्लाना और आजजी करना मुफीद हो। ठीक है ना, ये दुनिया में अल्लाह ताला से अब चिल्ला चिल्ला के तो दुआ करना सुन्नत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आजजी करके अल्लाह ताला से दुआ करना इस दारुल अमल के अंदर हमें करना है। अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब जो इस वक्त सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सब के सब इस वक्त दारुल अमल के अंदर है, राइट। जब तक दारुल अमल में है उस वक्त तक मोहलत है, जब दारुल जजा में चले जाएंगे इट विल बी ऑल ओवर, ठीक है ना, नो मोर अमल। तो अभी कर लें हम ये सब कुछ जो समझाने की कोशिश की जा रही है। तो जो दारुल अमल था इसमें तो तुम्हारा ये हाल था कि मेरी आयतें तुमको पढ़ पढ़ कर रसूल की जुबान से सुनाई जाया करती थी, तो तुम उल्टे पांव भागते थे तकब्बुर करते हुए, कुरान का मशगला बनाते हुए, यानी कुरान को जो है ना वो शुगल शुगल मेला, उस तरीके से कुरान की आयतों को, कुरान की बातों को लेते थे। अच्छा, रसूल की जुबान से सुनाई जाती थी, ठीक है ना, यानी कद कानत आयाती तुतला अलैकुम, कि मेरी आयात जो है तो तुम्हें सुनाई जाती थी, तो भाई रसूल की जुबान से सुनाई जाती थी। तो ये तो अगर हम रसूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ नबी को लें जिनके ऊपर वही नाजिल होती थी, तो इसका मतलब ये है कि काफिर तो फिर सिर्फ और सिर्फ नबी के जमाने के लोग हैं ना। नबी जब दुनिया से चले गए तो फिर तो कोई ऐसा शख्स है ही नहीं जिसको रसूल जो है वो आयात पढ़ पढ़ के सुनाए, है ना भाई। 20वीं सदी, 19वीं सदी, 18वीं सदी, 16वीं सदी, दूसरी सदी नबी अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद कोई ऐसा शख्स नहीं दुनिया में पैदा हुआ ना दुनिया में रहा कि जिसको के अल्लाह के नबी आयात पढ़ पढ़ के सुनाए। अगर काफिर होने की यही तारीफ है कि अल्लाह के नबी जिसको आयात पढ़ के सुनाए और वो अल्लाह के नबी का इनकार करे तो वो काफिर है, तो इसका मतलब ये है कि आइंदा काफिर होना दुनिया में बंद हो गए, ठीक है ना। तो अब हम सारे के सारे जो है मुसलमान है, चाहे उसका नाम जो है वो क्रिस्टोफर हो, चाहे उसका नाम जो है वो हरी कृष्णा हो, चाहे उसका नाम जो है वो गोल्ड स्मिथ हो, राइट, सारे के सारे माशाल्लाह, है ना भाई। हिटलर साहब भी जो है वही, वो भी जन्नत में जाएंगे, और आजकल जिनसे मुसलमानों को बहुत ज्यादा खार चढ़ी हुई है वो भी जन्नत में ही जाएंगे, है ना, पड़ोस के मुल्क के अंदर, वो भी सारे के सारे जन्नत में जाएंगे, क्योंकि रसूल ने तो किसी को सुनाया नहीं आयात पढ़ पढ़ के, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है ना वो रसूल की तारीफ के अंदर रसूलों के रसूल को भी दाखिल करना पड़ेगा, वही उनके ऊपर नहीं आती, नबूवत खत्म हो चुकी, ठीक है ना। लेकिन रसूलों का पैगाम पहुंचाने वाले जो उलमा मशाइख हैं सारे के सारे, वो आयात पढ़ के सुनाते हैं, हमें उनकी बात को भी संजीदगी से लेना है, क्योंकि हमारे जमाने में वही रसूलों के रसूल हैं, राइट। हमारे जमाने में यही है जो कि अल्लाह की आयात हमें खोल खोल के सुनाते हैं, पढ़ पढ़ करके बताते हैं, ठीक है ना। और अगर हम इनके साथ वो वाला एटीट्यूड रखेंगे जो उस जमाने के काफिरों ने अपने नबी के साथ रखा था, तो हमें भी सजा मिलेगी। ये नहीं है कि जी हमने तो नबी के साथ को थोड़ी किया है तो हमें को थोड़ी सजा मिलनी चाहिए, ठीक है तो कुरान की बात ना, ठीक है ना, बात तो वही है। हाँ, मुंह बदल गया है, जुबान बदल गई है फिजिकली, राइट, लेकिन बात तो वही है। ये भी बहुत बड़ी गलती करते हैं, है ना, कि भाई वो तो यानी इस बात पे कि अच्छा जी तुम पता नहीं क्या उल्टे सीधे जो है वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल, तो इस कुरान की शान में बेहुदा बकते हुए कि कोई उसको सहर कहता था, कोई शेर कहता था, और मशगले का यही मतलब है, ठीक है ना। ये कुरान का मशगला बनाने का मतलब कि शेर कहना उसको, और अच्छा, बस तुमने दारुल अमल में जैसा किया आज दारुल जजा में वैसा ही भुगतो, जैसी करनी वैसी भर। आगे भी है, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के देख, ठीक है ना, सब लग पता जाएगा। तो और ये लोग जो कुरान की और साहिब कुरान की तकजीब कर रहे हैं, तो इसका क्या सबब है, क्या इन लोगों ने इस कलाम इलाही में गौर नहीं किया जिससे इसका एजाज जाहिर हो जाता और ये ईमान ले आते, ठीक है ना। यानी अल्लाह के कलाम के ऊपर गौर कर लें, उस जमाने के लोग जो थे जो अरबी जुबान जानते थे, ठीक है ना, تو وہ عربی عبارت کے اندر غور کر لیتے، اس کے اعجاز کے اندر، اس کے فصاحت و بلاغت کے اندر غور کر لیتے، تو اگرچہ کہ اگر ایون ایف وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرسنالٹی کو نہیں بھی جانتے تھے نا، پھر بھی قرآن کے اس کے اوپر غور کرنے سے ان کو ہدایت مل جاتی. اور آج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو بہت سارے دوسرے قسم کے میریکلز جن کو کہتے ہیں سائنٹیفک میریکلز ان دا قرآن وغیرہ، ٹھیک ہے نا، تو اگر قرآن کی انہی باتوں کے اوپر غور کر لو تو پھر یہ کہ بھئی 1400 سال گزر گئے نبی علیہ السلام کو، ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں، اور ہم نے تو جو ہے وہ ایسے مسلمان نہیں دیکھے جن کی کہ کردار اتنا اچھا تھا. بھئی ایسے مسلمان نہیں دیکھے، لیکن قرآن تو دیکھا ہے نا بھائی، قرآن کے اندر یہ نشانیاں اور یہ میریکلز اور یہ سب کچھ جو ہے، بلکہ قرآن تو کیا حدیث مبارکہ کے اندر کتنے سارے سائنٹیفک میریکلز وغیرہ آج موجود ہیں. تو اگر غور کر لیتے نا ان باتوں کے اوپر تو ظاہر ہو جاتا، حق ظاہر ہو جاتا اور یہ ایمان لے آتے. تو اس وجہ سے نا کوئی بھی جو ہے وہ ایکسکیوز نہیں بنا سکے گا کہ جی ہمارے زمانے میں ایسے لوگ نہیں تھے، یا جو ہے وہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا، یا سب کچھ. یا تکذیب کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے بڑوں کے پاس نہیں آئی تھی، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ جو یہ تکذیب کر رہے ہیں تو اس کا ایک یہ ایکسکیوز بنائیں گے کہ جی کوئی نئی چیز دے کر کے آ گئے جس کو کہ ہمارے باپ دادا تو اس سے واقف نہیں تھے. مراد اس سے احکام الہیہ کا آنا ہے. بھائی قرآن تو ظاہر ہے پہلے کبھی نہیں نازل ہوا تھا، رائٹ، قرآن تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بالکل نیا نازل ہوا تھا. تو اب یہاں پہ کیا کیا مراد ہے؟ یہاں پر مراد قرآن نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد جو ہے وہ اللہ کے حکم ہے، احکام الہیہ کا آنا ہے، جو کوئی نئی بات نہیں تھی. ساری انسانیت واقف تھی کہ اللہ کے احکام جو ہیں وہ نبیوں کے واسطے سے آتے ہیں، یعنی نبیوں کی بارش ہوتی تھی، ہے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے پہلے تک جو ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان وقت رہا ہے، اس میں صرف کوئی نبی نہیں آئے، ٹھیک ہے، لیکن نبیوں کی بات کو لوگوں میں پھیلانے والے اس زمانے میں بھی رہے، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان، ٹھیک ہے نا، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بعد بھی رہے. کچھ ایسے لوگ بھی تھے مکہ مکرمہ کے اندر جو کہ صحیح عیسائیت پر تھے یا صحیح یہودیت کے اوپر تھے. یہ ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کے پاس جو جن کو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ لے کر کے آئی تھی، وہ تھے، اور دوسرے بھی لوگ تھے، ٹھیک ہے. اور ان سے پہلے یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے زمانے میں تو ملٹیپل نبی موجود ہوتے ہیں، یحییٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں، زکریہ علیہ السلام بھی موجود ہیں، ہر علاقے، جیسے شیخ الحدیث صاحب بھی بیان کر رہے تھے جو موجود تھے سن رہے تھے ان، ہے نا، ہر ہر علاقے میں نبی، الگ الگ نبی، ہر ہر زمانے میں الگ الگ نبی، ایک نبی نہیں گیا، دو نبی آ گئے. تو بھائی انسانیت جو ہے وہ اس بات سے بہت اچھی طرح سے واقف تھی کہ یہ احکام جو ہیں یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ان کی امتوں کو یہی احکام دیے جاتے رہے ہیں. کقول ہی تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، کہ رسول فرماتے ہیں کہ میں کوئی انوکھا پیغمبر کوئی تھوڑی ہوں، میں کوئی نیا پیغمبر کوئی تھوڑی ہوں، بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، کہ جیسے مجھ سے جو ہے وہ رسالت کی ابتدا ہوئی ہے، رائٹ، یا کوئی انوکھی چیز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. بس تکذیب کی یہ وجہ بھی باطل ٹھہری، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ جو ایکسکیوزز بناتے ہیں نا کہ ہم نے اس وجہ سے ان کی بات نہیں مانی، یہ بات بھی ایک دم رد ہو گئی، باطل ہو گئی یہ بات بھی، ٹھیک ہے، ایلیمینیٹ ہو گئی. اور یہ دو وجہ تو قرآن کے متعلق ہیں جو یہ کہتے تھے کہ جی ایک تو یہ کہ کوئی نئی چیز آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک منٹ کیا تھا، ہاں، یعنی کہ ایک تو کوئی غور کے قابل یہ چیز نہیں ہے، اور دوسری کہ کوئی نئی چیز دے کر کے آ گئے جو ہمارے باپ داداؤں کو نہیں پتا تھی، ٹھیک ہے. تو یہ تو دونوں باتیں جو ہے نا وہ قرآن کے متعلق یہ کرتے تھے. آگے صاحب قرآن کے متعلق فرماتے ہیں، یعنی کیا کہ وجہ تکذیب یہ ہے कि ये लोग अपने रसूल की सिफत दयानत व सिद्क को अमानत से वाकिफ ना थे, इसकी वजह से उनके मुनकर हैं। ठीक है भाई, हम इनका इसलिए इनकार करते हैं क्योंकि ये तो बस ऐसी किस्म के लूज पर्सनालिटी है इनकी, नाउज बिल्ला, इस वजह से हम इनका इनकार करते हैं। ठीक है, तो इसका कह रहे हैं कि ये तो वाकिफ थे नबी अलैहिस्सलाम की दयानत व सिद्क को अमानत से। ठीक है, तो कहते हैं कि यानी ये वजह भी बातिल है क्योंकि आपके सिद्क व दयानत पर सबका इत्तेफाक था, या ये वजह है कि ये लोग नाउज बिल्ला आपकी निस्बत जुनून के कायल हैं। ठीक है, जो आपका आला दर्जे का साहिब अकल और साहिब राय होना भी जाहिर है ना, वो जो हजर असद वाला वाकया हुआ था कि सबसे आला साहिब राय जो थे वो नबी अलैहिस्सलाम थे उस पूरे मुआशरे के अंदर, सो वाकई में उनसे कोई वजह भी माकूल नहीं है। ठीक है ना, यानी उनके इनकार की कोई भी माकूल वजह नहीं है, कोई भी एक्सेप्टेबल रीजन इनकी तरफ से नहीं, बल्कि असली वजह। अब हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने जो है ना वो अपने यानी हकीमुल उम्मत होने का, यानी जो उलमा मशायख ने हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह को हकीमुल उम्मत करार दिया ना, हजरत उसकी एक और जो है वो मुजाहरा फरमा रहे हैं यहाँ पर। क्या जबरदस्त बात लिख रहे हैं कि तर्जुमत यानी पहले तो तर्जुमा लिखते हैं ना अल्लाह ताला की बात का, कि ये रसूल उनके पास हक बात लेकर आए हैं, यानी असली वजह ये है, ये असली वजह हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज है कि असली वजह ये है कि ये रसूल, जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये रसूल उनके पास हक बात लेकर आए हैं। ठीक है ना, बल जा अहम बिल हक। ठीक है, हक बात लेकर के आए हैं और इनमें अक्सर लोग हक बात से नफरत रखते हैं, वो अक्सर हम लिल हक कार्य, इनमें अक्सर लोग हक बात से नफरत रखते हैं। ठीक है ना, अब तफसीरन जो लिखा है ना हजरत ने, बस ये तमाम तर वजह है तकजीब, इसको ना हाइडलाइट कर लें, काम आएगी इंशाल्लाह, बहुत ज्यादा काम आएगी अगर इसको दिल में भी हाईलाइट कर लें तब बहुत ज्यादा काम आएगी, वैसे कागज पे हाईलाइट करने से भी कुछ कुछ काम आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, क्या है, बस ये तमाम तर वजह है तकजीब, क्या कि रसूल जो आता है वो हक बात लेकर के आता है और ये जो ना मानना मानने वाले होते हैं ये हक बात को पसंद नहीं करते। ठीक है ना, बस ये तमाम तर वजह वजह है तकजीब की और अदम इत्तेबाए हक की, और ये लोग इस दीन हक का इत्तेबा तो क्या करते, ये तो और उल्टा ये चाहते हैं कि वो दीन हक ही उनके ख्यालात के ताबे कर दिया जाए। ठीक है, अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है, हक बात से नफरत रखते हैं। ठीक है ना, अब आपसे ये सवाल है ताकि आपकी भी कुछ पार्टिसिपेशन रहे भी क्लास के अंदर। ठीक है ना, कि ये कौन सी वाली हक बात होती है जिससे के नफरत रखते हैं, मिसाल के तौर पर एक जो पहली मिसाल मेरे जहन में आती है वो ये कि जी कोलेस्ट्रॉल खाने नहीं, चिकनी और तली हुई चीजें खाने से इंसान का कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, फिर डॉक्टर साहब ने आकर के ना ये हक बात जो है वो बताई किसी को कि तली हुई चीजें खाने से कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है। ठीक है, तो काफिर जो है वो हक बात से नफरत रखते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं भाई है कि ये लोग जो है ना वो हक बात से नफरत रखते हैं, तो अब डॉक्टर साहब जब ये बात आके बताएंगे तो काफिर जो है वो इस बात से नफरत करेगा क्योंकि ये तो हक बात है। या ये कि क्या कहते हैं, अमेरिका ने जो है वो हिरोशिमा के ऊपर जो है वो एटम बम गिराया जिसकी वजह से जो है वो पता नहीं 40 लाख लोग जो है वो लुकमा अजल बन गए, अब काफिर को जब आप ये बात बताएंगे तो ये हक बात है तो काफिर उससे नफरत करेगा। जी जजा और सजा वाली हक बात, नहीं जजा और सजा वाली हक बात से नफरत करता है काफिर, वो तो एक एक अकीदे का एक यानी दूसरा एक, अब यहां पर जो है ना वो जरा अभी अभी अपने करंट लाइफ की बात कर लें, ठीक है ना? ठीक है, तो कौन सी वाली हक बात से काफिर नफरत करता है? हालात हाजरा वाली हक बात कि जी पाकिस्तान को जो है ना वो चोरों लुटेरों ने जो है वो कंगाल कर दिया, चोरों लुटेरों ने पाकिस्तान को कंगाल कर दिया और जो है वो अरबों डॉलर का जो है वो हमारे ऊपर कर्जा चढ़ गया, काफिर इस हक बात से जो है वो नफरत करता है। भाई कौन सी वाली हक बात से नफरत करता है? ठीक है, नफ्स पर कंट्रोल की बात, पैरवी। पैरवी का क्या मतलब है आपका? हक की पैरवी से नफरत करता है। अच्छा, क्या मतलब? ये हक जो आपको हम खबरें बता रहे हैं, अखबार, हालात हाजरा, तो उनकी को क्या पैरवी करेंगे वापस, है ना? तो आज माशाल्लाह मर्दों की तरफ से सही अच्छे जवाब आ रहे हैं। वो हक बात जो नफ्स के खिलाफ हो, जो उसके नफ्स के खिलाफ, ठीक है ना? अल्लाह ताला के अहकाम, अल्लाह ताला एक है, नहीं अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला तो एक ही है, सारे काफिर इस बात को मानते हैं कि अल्लाह ताला एक ही है, ठीक है ना? अल्लाह ताला दो हैं, इसके ऊपर कोई काफिर यकीन नहीं रखता, ठीक है ना? अल्लाह ताला जो है ना वो सिर्फ एक ही है, इलाह की बात नहीं कर रहे, अल्लाह ताला की बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला एक ही है, ठीक है? वो सब काफिर इस बात को मानते हैं, इलाह जो है वो एक से ज्यादा, खैर अल्लाह ताला और इलाह में फर्क होता है। अच्छा खैर, अल्लाह ताला के अहकाम से नहीं, अल्लाह ताला के अहकाम से भी नफरत नहीं करता। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला के अहकाम, तो भाई जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं, अल्लाह ताला का हुक्म ये है कि वो अवाम के साथ इंसाफ करें, ठीक है ना? अब कोई काफिर जो है वो इस बात से नफरत करता है कि अल्लाह ताला का पॉलिटिशियंस को हुक्म यह है कि वो अवाम उन्नास के साथ जो है वो इंसाफ का बर्ताव करें, काफिर इस बात से नफरत करता है। हक बात जो वो जो उन्होंने खुद डिफाइन की हुई है, क्या मतलब? हक बात वो जो उन्होंने खुद डिफाइन की हुई है उससे वो नफरत करते हैं। ये तो बात समझ में नहीं आई मेरे। नफ्स पर कंट्रोल की बात, नफ्स को जो काम पसंद आता है और उसे करने से मना करना पसंद नहीं आता, शरीयत के अहकाम जो आते हैं नबी से नफरत करते हैं कि उनका ठिकाना जहन्नुम है, कि उनका ठिकाना जहन्नुम है, वो इस बात से नफरत करते हैं जब काफिर को जाके कोई नबी बोलता है तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम है, ठीक है? तो वो इस बात से नफरत करते हैं। पहली बात यह है कि नबी कोई ऐसी बात करता ही नहीं है कि तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम है, ठीक है ना? क्योंकि नबी जो है ना उनके अल्फाज जो हैं वो कुरान मजीद में है कि ना मुझे मेरा पता है ना मुझे तुम्हारा पता है, ठीक है ना? तो वो तो भाई किसी को पकड़ के कहना तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम है, वो तो बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस थे कि अबू जहल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था औला लका औला तुम्मा औला लका पाउला, ठीक है? वरना नबी किसी को बोल पकड़ के नहीं कहते करीबन तुम जहन्नुम में जाओगे, ठीक है ना? तो जब नबी ने कही ऐसी बात कही नहीं तो फिर काफिर इस बात से कैसे नफरत करेगा जो बात नबी ने कही नहीं, ठीक है? अल्लाह ताला हमारा रब है और मैं उनका रसूल हूँ जो हिदायत की बातें लेकर आया हूँ। नहीं, नफ्स को जो काम पसंद आता है और उसे करने से मना करना पसंद नहीं आता। जी चलिए, ये बात जो है ना ये जरा क्लोज है, हर वो काम जो हमारे करने का दिल चाहे लेकिन वो खिलाफ शरा हो उससे नफरत करते हैं। हक बात वो जो उन्होंने खुद नहीं, जो उनके एक्सेप्टेड कल्चर के खिलाफ, ठीक है? हाँ ये चले, ये क्लोज बात है, जो उनके एक्सेप्टेड कल्चर के खिलाफ हक बात हो ना वो उसको नापसंद करते हैं, ठीक है ना? अच्छा, अब थोड़ा सा इसको एक और मजीद थोड़ी सी इसकी तफसील अगर देखें या किसी और समझ लें, एक और रुख तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि है वो एक ही रुख है, एक ही एंगल है। काफिर जिस बात से नफरत करता है ना, ठीक है ना, वो वही बात है जिससे कि हर बेवकूफ इंसान नफरत करता है, हर बेवकूफ इंसान, चाहे वो काफिर हो चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो जो भी हो, ठीक है ना? हर बंदा नफरत करता है किससे? आईने से, आईना, ठीक है, मिरर, ठीक है ना भाई? मिरर के सामने जब आप खड़े हो, आईने के सामने, और आईना आपकी गलतियों की निशानदेही कर दे, ठीक है ना, कि भाई आप कपड़े दुरुस्त नहीं है, आपके बाल दुरुस्त नहीं है, आपके जो है वो आई शेडो दुरुस्त नहीं है, आपकी लिपस्टिक ठीक नहीं है, क्योंकि खवातीन भी सुन रही है क्लास को, ठीक है। तो अब जो है ना आईने से नफरत शुरू कर दी कि भाई आईने ने तो बस असलियत दिखाई है कि भाई तुम अपनी इसलाह कर लो, राइट, ये गलत है, इसको ठीक कर लो। अब इसके ऊपर जो है वो आईने से नफरत, क्यों बताई मुझे, तुम कौन होते हो मुझे करने वाले, मेरी गलतियां बताने वाले, तुम्हें कहां से ये इल्म आ गया, तुम कहां से अफलातून बन गए जो मुझे जो है वो बता रहे हो क्या गलत है क्या सही है। अबे मुझे पहले से पता है क्या गलत है क्या सही है, मैं सब जानता हूं, सब पता है मुझे, राइट। तुम अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस, राइट, बी विद इन योर टाइमिंग्स, राइट, अपनी औकात में रहो, ठीक है ना। खबरदार जो मुझे कुछ कहा तुमने, अपनी इसलाह की फिक्र करो जाकर, ठीक है ना। इससे नफरत करते हैं, इससे नफरत करते, ठीक है ना। दूसरों को आईना दिखाता रहे वो, उससे नफरत नहीं करते, हाँ वो गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, उसको उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको वैसे नहीं करना चाहिए, उसको हक नहीं मानना चाहिए, उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसको धोखा नहीं देना चाहिए, उसको चक्कर नहीं चक्करबाजी नहीं करनी चाहिए, इससे कोई नफरत नहीं करता, इससे कोई नफरत नहीं करता। नफरत कब करता है, जब किसी बंदे को उसका अपना आईना दिखाया जा रहा होता है, उससे नफरत करते हैं। हालात हाजरा के अंदर चोरों डाकुओं ने पाकिस्तान को लूट लिया, अमेरिका ने ने, 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 ने हिरोशिमा के ऊपर, नागासाकी के ऊपर बम गिरा दिया, इन सब से नफरत नहीं करते, ठीक है ना। इसलिए तो एक सब्जेक्टिव चीज है, आई सुनी गुजर गई, ठीक है ना। हकीकत, अपने बारे में जो हकीकत होती है ना उससे इंसान नफरत करता है, अपने बारे में जो हकीकत होती है, ठीक है। तो अब अगर ये बात समझ में आ गई और हमने मान ली कि हाँ वाकई ऐसा है, तो फिर अब हम अपने बारे में देखते हैं कि क्या हम भी यही नहीं करते, इसलाह से, अपनी इसलाह से हम नफरत करते हैं, दूसरों की इसलाह के ऊपर बड़े खुश होते हैं, राइट। रसूल की पैरवी हर हाल में चाहे नफ्स के खिलाफ। क्रिश्चियंस बिलीव दैट क्राइस्ट बैनिश्ड द डेविल इन अ स्वाइन हर्ड। Do we believe the same in Islam? Of course not. Christ banished the devil in a swine herd. Where did you come with this? पता नहीं भाई, मैंने पहली दफा सुना है। Anyway, खैर ऐसा of course नहीं है। Banish the devil in a swine herd. I don't know what this. हर वो काम जो हमारे करने का दिल चाहता, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये वो चीज है इससे के ये तो रसूल जो है ना जब आईना इनको दिखाते थे ना तो इस बात से इनको नफरत होती थी। बस ये तमाम तर वजह है तकजीब की और अदम इत्तबाए हक की। और ये लोग इस दीन हक का इत्तबा तो क्या करते, ये वही है कुरान को बदल देने की कोशिश, दीन को बदल देने की कोशिश, तहरीफ करना दीन के अंदर, है ना। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, अल्लाह कह रहा है सब कुछ होता और ये कह रहे हैं कुछ नहीं होता गुनाह करने से। मैं ये अमल सुई युजा भी ही, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अपने कुरान के अंदर, और ये कहते हैं कि कुछ नहीं होता, तो भाई क्या मतलब, आप कुरान को बदल देना चाहते हैं ना, आप दीन को बदल देना चाहते हैं ना ये कह करके कि गुनाह करने से कुछ भी नहीं होता, राइट, बेपर्दगी से कुछ भी नहीं होता, मेरे ऊपर जो मुसीबत आई है ये तो बस, यानी ये तो बस किसी दूसरे की वजह से आई है, या ये तो बस जो है वो मेरे दर्जात बढ़ाने के लिए आई है, और खुद जो है ना वो पूरी दुनिया में बेपर्दा घूम रही है, अपने इंटरनेट के ऊपर जो है वो तस्वीरें लगाई हुई हैं, है? अल्लाह ताला की लानत उस औरत के ऊपर जो अपने आप को दिखाए, और अल्लाह की लानत उस मर्द के ऊपर जो कि शहवत के साथ ऐसी औरत को देखे। अब जब अल्लाह की लानत हो गई, अल्लाह की रहमतें दूर हो गई, ठीक है ना, तो अब जो है वो मुसीबत पता नहीं किसी पड़ोसी की वजह से आई है, राइट, किसी रिश्तेदार की वजह से मुसीबत आई है। भाई मुसीबत तो आपकी हरकत की वजह से आई है, या आपकी हरकत की वजह से अल्लाह की रहमतें दूर हो गई हैं आपसे, अब तो खाली जिन्नात ही आएंगे, अब तो खाली जो है वो नहुसतें आएंगी आपके ऊपर, लेकिन नहीं, बस अपना दीन बना के रखा हुआ है, ठीक है ना। तो भाई अल्लाह का कुरान वाला दीन जो है उसको बदलने की कोशिश जो है ना, ये तो भाई यहूदियों का काम है, ये मुसलमान का काम की थोड़ी है। यहूदी जो है ना वो ये उनका ये तरीका है ईसाई उनकी मुखालफत करते थे, ठीक है ना, ईसाई उनको बहुत बुरी तरीके से पकड़ पकड़ के मारते रहते थे, बहुत बुरी तरीके से उनको अजियतें देते थे, ठीक है ना। तो उन्होंने इसका ये हल निकाला कि ये ईसाई किस वजह से हमें अजियतें दे रहे हैं, भाई मसले को डायग्नोस करो। ये उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, डायग्नोसिस करी कि ये ईसाई हमारी मुखालफत जो इतनी करते हैं, हमें जो इतना मारते हैं, क्यों मारते हैं, इसकी वजह क्या है। इसकी वजह सिर्फ ये कोई थोड़ी है कि हमारा रंग ज्यादा गोरा है, उनका रंग जो है वो इतना गोरा नहीं है, तो इस वजह से हसद में उबतलाए हुए है ना। बनी इसराइल वालों का बड़े खूबसूरत है, बनी इसराइल वाले यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद में से है ना, राइट। तो ईसाई हमें इस वजह से मार रहे हैं क्योंकि हम ज्यादा हसीन है, या हमारे पास ज्यादा दौलत होती है इस वजह से ईसाई हमें मार रहे हैं, नहीं, बल्कि उन्होंने डायग्नोसिस करी, सही डायग्नोसिस करी, ईसाई हमें इसलिए मारते हैं क्योंकि उनका दीन हमें बुरा भला कहता है। बात समझ में आ रही है। यहूदियों ने डायग्नोसिस करी कि ईसाइयों के हमारी नफरत की वजह उनका दीन है। अब इसका सलूशन निकाला, क्या सलूशन निकाला जी, आप बताएं। ईसाई यहूदियों को पकड़ पकड़ के हजारों लाखों की तादाद में कत्लो गारत, ये पूरी हिस्ट्री भरी हुई है इससे, ठीक है ना। तो यहूदियों ने सही डायग्नोसिस करी कि दीन की वजह से ये हमें मारते हैं। अब इसका हल उन्होंने क्या निकाला, ये आप बताएंगे, तब हम आपको पीछा छोड़ेंगे। जब तक हम ये सवाल पढ़ते हैं किसी का, आया मर्दों की तरफ, इफ यू ऑलरेडी हैव अ मिरर इन योर लाइफ एंड सम अदर मिरर टेल्स यू योर मिस्टेक एंड यू डोंट लाइक इट, इज दैट जस्टिफाइड और इज इट टू अ साइन ऑफ अरोगेंस? हाँ, इफ यू हैव अ मिरर इन लाइफ and some other mirror tells you your mistakes and you don't like it, is that justified? No, it's not justified. theek hai na. to agar koi aur aapko aina dikha raha hai, kyunki aina sirf ek nahi hai na bhai, mu'mino miratul mu'min hai na, iman wala dusra iman wale ka aina hai, to uska matlab ye koi thodi hai ki sirf ek hi aina hona chahiye, dusra banda koi aina nahi ho sakta bhai, sare aine hain. agar koi bhi aapko ikhlas ke sath aur ilm ke sath khair khwahi ke sath aapko aapki गलती बता रहा है, ठीक है ना, तो अब आप उसको शन ऑफ शन नहीं कर सकते उसको कि तुम तो मेरे डेजिग्नेटेड आईना नहीं हो, इस वजह से जो है वो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। नहीं, ये एरोगेंस है, किसी को भी इस तरीके से जवाब दे देना, ठीक है ना। जिसको अपनी इस्लाह की फिक्र हो जाती है ना, वो तो दीवार के ऊपर नसीहत पढ़ के उसके ऊपर अमल करना शुरू कर देता है। दीवार, राइट, जो कि कोई इंसान भी नहीं है, अशरफुल मखलूकात भी नहीं है, उससे नसीहत कबूल कर लेता है जिसको इस्लाह की फिक्र होता है, ठीक है। तो अब यहूदियों ने जब ये डायग्नोसिस कर लिया, तो उन्होंने क्या इसका सलूशन निकाला, दे डाइवर्टेड क्रिश्चियंस अटेंशंस टुवर्ड अस। नो नो, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, उनको अपने ही उलमा के खिलाफ कर दें। अब वो तो फिर उसका तरीका था ना, ये तो उलमा के खिलाफ करना तो तरीका था, लेकिन सलूशन क्या निकाला, उन्होंने उनका दीन खराब कर दिया। बिल्कुल सही फरमाया, ठीक है ना, उनके दीन के अंदर तहरीफ कर दी, दीन को बदल दिया उनके, ठीक है ना, उसके अंदर से एंटी यहूदी एलिमेंट सारे निकाल दिए और प्रो यहूदी एलिमेंट्स डाल दिए उसके अंदर, ठीक है ना। और ये कि उसके दीन, उनके दीन के अंदर से बेहयाई की जो नफरत थी उसको निकाल दिया, हत्ता के सुअर की नफरत को निकाल दिया, राइट। अब ईसाई जो है वो सुअर से मोहब्बत करते हैं, जगह जगह देख लें आप, राइट, सुअरों को उनके मुआशरे में दाखिल कर करके उनके इमेजेस को, उनके कार्टून्स को, राइट, अब वो सुअर से मोहब्बत करते हैं, हालांकि पहले कितनी शदीद नफरत किया करते थे, ठीक है ना। दीन में तहरीफ कर दी, जब ईसाइयों का दीन खराब हो गया तो अब यहूदियों से वो क्यों नफरत करेंगे भाई, राइट, नफरत की वजह दीन थी, जब दीन बिगड़ गया अब क्यों नफरत करेंगे। तो उन्होंने इस तरीके से ईसाइयों का इलाज किया, जब ईसाई जो है वो रास्ते से हट गए, अब ईसाई जो है वो उनके दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं, ठीक है ना। अब बारी आई किसकी, मौलवी साहब की, राइट, अब बारी आई मुसलमान की, कि अब ये मुसलमान जो है, अगरचे कि ये यहूदियों को कत्ल नहीं करते, यहूदियों को पकड़ पकड़ के उस तरह से अजियत तो कोई नहीं दी मुसलमान ने, कभी भी नहीं दी जिस तरह से कि ईसाइयों ने दी, लेकिन फिर भी यहूदियत के तो खिलाफ है ना, राइट। और इनके कुरान के अंदर जो है, हमारे कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने खुल के बात फरमाई हुई है, सारी यहूदियों के बहुत तफसीरात मौजूद हैं, ठीक है ना। तो अब इनकी इनकी नफरत का इलाज कैसे करेंगे भाई, है ना, इनकी नफरत 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 का भी यही इलाज है, मुसलमानों की नफरत का भी यही इलाज है, मुसलमानों के दीन को बदल दो, मुसलमानों के दीन में तहरीफ पैदा कर दो, हलाल को हराम, हराम को हलाल, और जो गुनाह है उनके बारे में कहो कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, राइट, और जो नेकी का काम है, जो शरीयत और सुन्नत की पाबंदी है उसको जो है वो बेवकूफी करार दे दो, राइट। इस तरीके से जो है मुसलमानों का भी दीन बदल दो, मुसलमान भी रास्ते का कांटा नहीं रहेंगे, रास्ते से हट जाएंगे, ठीक है। तो ये नौ की मेहनत है, लेकिन ये जो इन्होंने ये जो मेहनत शुरू करी है ना, ये मेहनत भी कोई नई मेहनत नहीं है, बल्कि काफिर जो है वो पहले भी ऐसे ही करते थे, ठीक है ना, कि वो खुद बदलते हैं नहीं, कुरान को बदल देते हैं, अल्लाह के अहकाम को बदलने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। यहूदी पहले भी यही करते थे अपने दीन के अंदर, उन्होंने यही किया। तो वही फरमा रहे हैं कि वो चाहते हैं कि दीन हक ही उनके ख्यालात के ताबे कर दिया जाए, और जो मजामीन कुरान में उनके खिलाफ हैं उनको खारिज या तरमीम कर दिया जाए, ठीक है। पर्दे का हुक्म निकाल दो जी, मौसीकी के खिलाफ जो हदीस मुबारका के अंदर अहकाम आते हैं उनको निकाल दो जी, ठीक है ना, फिर जो है वो ढोल धमाके के साथ हम दीन पे अमल करेंगे, ठीक है। मर्द औरत जो है वो साथ बैठ करके जो है वो दीन के ऊपर बात करेंगे, बड़े अल्लाह की विलायत की बातें होंगी, राइट, आखिरत की फिक्र की बातें होंगी, और सामने जो है आंटी जो है वो पूरे बाल खोल करके और कपड़े भी जो है ना बड़े ऐसे पहन करके, माशाल्लाह आखिरत के खौफ की बातें हो रही हैं भाई, अल्लाह से रो रो के दुआएं मांगी चली जा रही हैं, और आंटी जो है ना वो साथ बैठी हुई है, और माशाल्लाह क्या बात है आंटी की, राइट। ये है दीन, यही दीन इस्लाम के साथ इस वक्त हो रहा है, और डंके की चोट पर हो रहा है, डंके की चोट के ऊपर हो रहा है, यानी पूरी दुनिया देख रही है, टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर ये काम हो रहा है, सबके सामने खुल करके ये काम हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है ना ये ऐसे ही ये सब कुछ नहीं हो रहा, बल्कि मकसद है इसका, ठीक है ना, ताकि आपका जो दीन है ना, आप बेशक मस्जिदों में जाएं, तवाफ करें, आप एतिकाफ करें, आप सब कुछ करें, ठीक है ना, लेकिन फराइज के ऊपर अमल ना करें, नवाफिल के ऊपर खूब अमल करें आप नवाफिल के ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि नवाफिल वाला जो दीन है ना ये असली दीन है ही नहीं। असल दीन तो अकायद से शुरू होता है, दूसरे नंबर पे फराइज आते हैं, तीसरे नंबर पे नवाफिल आती हैं, ये असल दीन है। और तहरीफ शुदा दीन क्या है, नवाफिल ही नवाफिल, इखलाक ही इखलाक, स्वीट टॉक, ठीक है ना, लव फॉर ऑल हेट फॉर नन, ये है तहरीफ शुदा दीन, जो कि ईसाइत इस वक्त ईसाइत यही हालत है, ठीक है। तो इनके ख्यालात के ताबे कर दिया जाए, और जो मजामीन कुरान में उनके खिलाफ है उनको खारिज या तरमीम कर दिया जाए। कौली तआला फी सूरह यूनुस قال الذين لا يرجون لقاءنا, कि वो लोग जो के हमारे सामने पेश होने का कोई उनको फिक्र नहीं है, कोई उनको परवाह नहीं है, राइट, कोई उम्मीद नहीं है उनके अंदर के हमारे सामने पेश होंगे और फिर हम हिसाब किताब होगा ना, वो क्या कहते हैं, एती बिकुरआनिन गैरी हादा औ बद्दलहू, हमारे पास जो है वो एक कुरान लेकर के आओ इस कुरान के अलावा, कोई दूसरा कुरान लेकर के आओ हमारे पास, इस कुरान में तो बड़ी पाबंदियां हैं भाई, ये कुरान जो है ना ये तो बड़ा सख्त है, बड़ा जलाल है इस कुरान के अंदर, औ बद्दलहू, या ये पूरा कुरान अगर नहीं बदल सकते तो जो है वो जो इसके अंदर जलाली आयात हैं, जो इसके अंदर जो है ना वो पाबंदी वाले अहकाम हैं उनको बदल दो। अल्लाह ताला ने ना कुरान में चीजें रखी हैं सारी, ये सारी चीजें जो हैं वो इसी एक कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने रखी हैं। अब जाहिर है कि इसको हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमारे इल्म की गहराई नहीं होती, हमारा जो है वो ऐसा कंट्रोल नहीं होता कुरान के उलूम के ऊपर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मशाइख के तफासीर के थ्रू, मशाइख की जो है वो इल्म को इस्तेमाल करते हुए, फायदा उठाते हुए जब हम कुरान को अप्रोच करते हैं, सब हमें मौजूद मिलता है वहां पर, ठीक है। देख लें हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह क्या जबरदस्त हजरत ने यहाँ पे कुरान की आयत आई है। और बफर्ज महाल अगर ऐसा अमर वाकई हो जाता और दीन हक उनके ख्यालात के ताबे और मुवाफिक हो जाता तो तमाम आलम में कुफ्र शिर्क फैल जाता, اور اس کا اثر یہ ہوتا کہ حق تعالیٰ کا غضب تمام عالم پر متوجہ ہو جاتا اور اس کا مقتضا یہ تھا، ٹھیک ہے، یعنی دین اسلام جو ہے نا وہ ان کے تابع نہیں ہوا اور نہ کبھی ہوگا، ٹھیک ہے نا. ہاں نہ ماننے والوں کی، تحریف کرنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی آخری زمانے، یعنی قرب قیامت کا زمانہ، تعداد بڑھ جائے گی، اور جو قائم ہوں گے شریعت اور سنت کے اوپر ان کی تعداد ریلیٹیولی سپیکنگ کم ہو جائے گی، لیکن ختم کبھی ختم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے نا پورے عالم میں کفر و شرک جو ہے وہ پھیلے گا نہیں، بلکہ ایگزمپٹڈ ایریاز رہیں گے. پھر اس کے بعد ریورسل پروسیس شروع ہو جائے گا جب وہ علامات کبریٰ شروع ہو جائیں گی، امام مہدی کا آنا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دجال کا آنا، یہ سب پھر ریورسل پروسیس شروع ہو جائے گا. پھر جو ہے نا وہ تحریف کرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی کم ہوتی جائے گی، اور ماننے والوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ جائے گی دنیا کے اندر، ٹھیک ہے. تو بفرض محال فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر سب کچھ ہی ختم ہو جاتا، ٹھیک ہے، تمام آسمان اور زمین اور جو ان میں آباد ہیں سب تباہ ہو جاتے، جیسا کہ قیامت میں تمام انسانوں میں گمراہی عام ہو جانے کے سبب اللہ تعالیٰ کا غضب بھی سب پر عام ہوگا. یعنی قیامت جو آئے گی نا، یہ کیا ہے قیامت؟ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، جیسے قوم عاد پہ عذاب آیا، قوم سمود پہ عذاب آیا، نوح پر عذاب آیا، ٹھیک ہے نا. ان عذابوں کی حقیقت کیا تھی؟ وہ ایک لمیٹڈ ایریا میں آئے تھے. اور جو قیامت کا عذاب ہوگا اس کی حقیقت کیا ہوگی؟ وہ پوری دنیا پر آئے گا. جس وجہ سے قوم عاد پہ عذاب آیا تھا اسی وجہ سے قیامت کا عذاب بھی آئے گا. فرق صرف یہ ہوگا اس میں ایکسیپشنز تھیں، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا، پوری دنیا میں نہیں آیا تھا، اور یہاں پر چونکہ ایمان والے اللہ تعالیٰ اٹھا چکے ہوں گے پہلے، دنیا سے سارے ایمان والے ختم ہو چکے ہوں گے اور پوری دنیا میں کفر و شرک پھیلا ہوا ہوگا، تو پوری دنیا کے اوپر عذاب آ جائے گا، ٹھیک ہے، جیسا قیامت میں تمام انسانوں میں گمراہی عام ہو جانے کے سبب اللہ تعالیٰ کا غضب بھی سب پر عام ہوگا، اور غضب الہی عام ہونے سے سب کی ہلاکت بھی عام ہوگی. اور اول تو کسی امر کا حق ہونا مقتضا ہے اس کے وجود و قبول کو، وہ نافع بھی نہ ہو اور اس کو قبول نہ کرنا خود عیب ہے، مگر ان لوگوں میں صرف یہی ایک عیب نہیں کہ حق سے کراہت ہو. یہ انشاءاللہ کل کی کلاس میں، کیونکہ ٹائم اوور ہو چکا ہے، کچھ میسیجز سارے اس میں پڑھے نہیں تھے تو وہ پڑھ لیتے ہیں، اور اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ پیچھے رک کے سوال پوچھ سکتے ہیں، ورنہ کلاس ختم کرتے ہیں. اس لیے عیسائیوں اور مسلمانوں میں دشمنی دلوا دو. نہیں، عیسائیوں اور مسلمانوں میں دشمنی جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے تھی، یہ یہودیوں نے نہیں دلوائی ہے دشمنی، ان کا دین خراب کر دیا. ہاں یہ بالکل آپ صحیح جواب دیا تھا، ان کے دین میں بگاڑ دیا جی، عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا کر. نہیں، جیوز نے یہ طریقہ نکالا کہ ان کی کتابیں بدل دیں، ہاں دین میں تحریف کر دیں، ان کے دین میں ملاوٹ کر دیں. جی یہ سارے جواب صحیح، ٹھیک ہے. سر اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو ہم ختم کرتے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مکافات عمل کیا ہے؟ مکافات عمل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بنی، ٹھیک ہے نا. تو عمل کا بدلہ ملنا اس کو مکافات، اور یہ برے عمل کے برے بدلے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اچھے عمل کے اچھے بدلے کے لیے یہ والا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، اگرچہ کہ معنی اس کا کامن بھی ہو سکتا ہے. اس کو مکافات عمل کہتے ہیں. السلام علیکم.